पेमा, अर्ज किया है, एक शेर सुनाता हूँ ध्यान से सुनो, एक शेर सुनाता हूँ ध्यान से सुनो। सुन रही हो कि नहीं प्रेमा?
अरे हाँ हाँ, तुम आके तो कहो।
मुझे नहीं आता, किसी और से सुनो।
अरे ये कैसा शेर हुआ जगत? अब मैं तुम्हें कुछ सुनाती
हूँ। हाँ, इरशाद इरशाद।
और बताओ कैसे हो तुम?
और बताओ कैसे हो तुम?
और बताओ कैसे हो तुम? अब तक पहले जैसे हो तुम?
अरे वाह 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 प्रेमा, क्या बात है। वैसे कहते हैं नहले पर देला, यानी मैं डाल डाल तू पात पात।
बिल्कुल। और जगत, मुझे लगता है अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हाँ।
तो चलो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं।
बिल्कुल।
तो दोस्तों, मैं हूँ प्रेमा नेगी
और मैं हूँ जगत चंदौली,
और हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है
नई दिशा। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम नई दिशा आ पहुंचा है अब अपने आखिरी मुकाम पर, और हमें उम्मीद है बल्कि पूरा यकीन है दोस्तों कि इस कार्यक्रम को जिस मकसद के साथ हमने शुरू किया था उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं।
और हमारा मकसद था हमारे श्रोताओं को HIV की पूरी जानकारी देना, और आपके द्वारा भेजे गए ढेरों SMS और खतों से आपकी जागरूकता का पता लगाना।
और इसलिए दोस्तों, आज हम आपको जानो अनजाने नहीं बल्कि जानो जानकार कहेंगे,
और उसमें बताएंगे एक ऐसी जरूरी बात जो कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे HIV के संबंध में जानकारी है। तो जगत, क्या कहते हो, जानो अनजाने में अपने जानकार दोस्तों को वो खास जानकारी दी जाए?
हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। दोस्तों, पिछले एक साल से हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको HIV के संबंध में तरह तरह की जानकारियां देते चले आ रहे हैं।
और दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जानकारियां किसी खजाने से कम नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता ही है, तो हम HIV के संबंध में जानकारी रखने वाले अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहते हैं कि HIV के संबंध में आपके पास जो भी जानकारी है उसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो जरूर बांटें।
और इन दोस्तों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जितने ज्यादा दोस्तों के साथ आप HIV के बारे में बात करेंगे, आप हमारे खास इनाम के उतने ही नजदीक आते चले जाएंगे।
जी हाँ, हमने रखे हैं कुछ खास इनाम हमारे उन दोस्तों के लिए जो HIV के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे और उसकी जानकारी SMS के जरिए हमें देंगे।
तो दोस्तों, अगर आप भी वो खास इनाम जीतना चाहते हैं तो हमारा SMS नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223।
इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी एपिसोड के अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, एक्यूट HIV सिंड्रोम क्या है?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब HIV एड्स की परिस्थिति में प्रगति करता है।
और एपिसोड 47 का सही जवाब देकर हमारे आज के भाग्यशाली विजेता बन गए हैं अजय कुमार स्वामी चुरू राजस्थान से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर।
और आज का सवाल है, समलैंगिक व्यक्ति को HIV का खतरा क्यों बना रहता है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, समलैंगिक व्यक्ति को HIV का खतरा क्यों बना रहता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, क्योंकि वो मल द्वारा सेक्स करते हैं, बी, एक से अधिक सेक्स पार्टनर होने के कारण, सी, अधिकतर कॉन्डोम का उपयोग नहीं होता, और डी, इन सभी कारणों की वजह से। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए, क्योंकि वो मल द्वार द्वारा सेक्स करते हैं, बी एक से अधिक सेक्स पार्टनर होने के कारण, सी अधिकतर कॉन्डोम का उपयोग नहीं होता, और डी इन सभी कारणों की वजह से।
तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अगर आपको जवाब मालूम है तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND51 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D और हमें लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का, जहां हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने HIV के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिनके हाथ में HIV के वायरस को खत्म करने की ताकत तो नहीं है, लेकिन हाँ HIV पॉजिटिव लोगों को जिंदगी जीने का नया जज्बा देने की क्षमता जरूर है। तो आइए मिलते हैं हमारे इन खास मेहमानों से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप लोगों से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मैं डॉक्टर कमल खुराना हूं, मैं एक मैरिज रिलेशनशिप और सेक्स काउंसलर हूं।
मैं रमन चावला हूं, मैं एक संस्था लॉयर्स कलेक्टिव HIV यूनिट से जुड़ा हुआ हूं। हम HIV पॉजिटिव लोगों के कानूनी अधिकारों के लिए काम करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से HIV एड्स की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं?
मेरे को आज कुल 4 साल हो गए हैं HIV की फील्ड में काम करते हुए।
अच्छा, वैसे इस दिशा में आपने अब तक क्या बदलाव महसूस किया है?
बदलाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे HIV हमारे देश में ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है। 89 में हमारे देश में पहला केस आया था HIV का, और हमने 89 से 98 तक ये देखा था कि बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव होता था, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन भी नहीं मिलती थी, एडमिशन मिलती थी तो उनको हॉस्पिटल के कोने में आइसोलेट कर दिया जाता था और लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे NGOs ऊपर आए, उन्होंने HIV पॉजिटिव लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, उनको शिक्षा दी, और 98 से हमने देखा कि HIV पॉजिटिव लोग एकजुट होकर नेटवर्क्स बना के काम करने लगे। तो मैं सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहा हूँ कि आज HIV पॉजिटिव लोग इकट्ठे हैं, खुद हैं और खुद अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, तो चाहे वो बराबरी का अधिकार हो और चाहे वो गोपनीयता का अधिकार हो।
मैं साइकोलॉजी की फील्ड में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, और मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग के अंदर कभी कभी हमारे पास HIV पॉजिटिव लोग भी आते हैं, जो कपल्स होते हैं, कभी कभी इंडिविजुअल्स भी आते हैं जो अपनी शादी को लेकर के चिंतित होते हैं। तो अब जो बदलाव हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, उससे पहले ऐसा नहीं था, अब लोग खुल करके इस बात को कहते हैं। तो जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं उनमें से मैंने ये देखा कि वो लोग एटलीस्ट कह रहे हैं अब और इन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं।
अच्छा, क्या आप कोई एक ऐसा कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से HIV की रोकथाम में जितनी तेजी से सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है?
एक काउंसलर की पोजीशन से जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो समझता हूँ कि HIV की रोकथाम में रिश्तों का, एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है उसका अच्छा ना होना भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपस में जब वो एक दूसरे की दिक्कतों को या एक दूसरे की इच्छाओं को जब व्यक्त नहीं करते हैं तो जाहिर है कि दिक्कतें आती हैं।
अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में?
मेरे हिसाब से जो HIV पॉजिटिव लोगों की तरफ जो भेदभाव है वही सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारी HIV के खिलाफ जो लड़ाई है उसको हम जीत नहीं पा रहे हैं, और जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पा रहा है। आज भी हम देखते हैं कि स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाता है, अगर वो खुद HIV पॉजिटिव होते हैं, या सिर्फ पेरेंट्स भी HIV पॉजिटिव होते हैं तब भी उनको स्कूलों से निकाल दिया जाता है। हम रेगुलरली देख रहे हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों का अस्पताल इलाज करने से मना कर रहे हैं, उनकी तरफ भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हम HIV में शायद जितना फ़र्क पड़ना चाहिए था, जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है।
जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जहाँ तक HIV के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का ताल्लुक है, तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी वो बात है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही है?
मेरे हिसाब से जो फ़र्क पड़ा है कि जो HIV पॉजिटिव लोगों ने एक साथ आके खुद अपने अधिकारों की जो मांग करी है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपने देखा कि 1992 में, एग्जांपल देता हूँ मैं, सोनागाची में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, खुद सेक्स वर्कर्स ने शुरू किया था, जहाँ सेक्स वर्कर्स ने खुद अपने आप को मोबिलाइज किया और उन्होंने बाकी जाके दूसरे सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के बारे में बताया, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको जागरूक किया। उससे फ़र्क ये हुआ कि 1992 में जहाँ 25.4% वो सेक्स वर्कर्स HIV पॉजिटिव थी, 1998 तक वो प्रेवलेंस 11% 5% तक आ गया, 11.5% तक आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ सेक्स वर्कर्स को मोबिलाइज किया और उससे फर्क पड़ा। और दूसरी बात यह है कि ये खुद सेक्स वर्कर्स, खुद एच आई पॉजिटिव लोग पीयर एजुकेटर्स हैं जो जाके दूसरे सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।
अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे?
आज हमारे देश में लोग अपनी बातों को लेकर के हम साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं और अपनी बातों को बता पाते हैं, जो पहले नहीं था। तो अब एच आई वी की रोकथाम में ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है, जब लोग इसको अपने अंदर घुट घुट के मरने के बजाय सामने आते हैं और इसके क्या निवारण है या क्या इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो भी ली जा सकें, उनके लिए भी आकर के बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इसका योगदान रहा एच आई वी की रोकथाम में।
आप लोगों का यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। सच ही कहा है किसी ने, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे।
एक बात उसने कही, एक बात हमने कही, एक बात उसने कही, एक बात हमने कही। खैर छोड़ो इन बातों को, चलते हैं आपकी बात की तरफ।
दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, इसे हमें किसने भेजा है ये बताएंगे आपको प्रेमा।
इसे हमें भेजा है अमन जी ने कानपुर से, और ये लिखते हैं कि मुझे कानपुर के आसपास एआरटी सेंटर की जानकारी चाहिए। अमन जी, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एआरटी सेंटर है, जहां आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी को भी एआरटी सेंटर की जानकारी लेनी हो तो नेको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट www.necoonline.org पर जाकर आप एआरटी सेंटर की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो।
और दोस्तों, अब समय हो गया है रेडियो धारावाहिक जीवन की राह का।
लेकिन दोस्तों, आज जीवन की राह की आखिरी कड़ी है, और सबसे अहम बात ये जो हमें आपको बतानी है कि अगर आप जीवन की राह के कुछ एपिसोड्स नहीं सुन पाए हैं या फिर आप हमारे प्रोग्राम के साथ देर से जुड़े हैं, तो आप सभी हमारा अगला एपिसोड, जो कि हमारा आखिरी एपिसोड होगा, उसे सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा आखिरी एपिसोड एक रिकैप एपिसोड होगा, जिसमें जीवन की राह की शुरू से आखिर तक की कहानी आपको सुनाई जाएगी। और आइए अब सुनते हैं जीवन की राह।
जीवन की राह, जीवन की राह, जीवन की राह, जीवन की राह।
पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, सरिता को विनोद के कमरे से एक चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि विनोद खुदकुशी करने के लिए घर से निकला है।
उधर जयपाल घर के हालातों से तंग आकर प्रधान को जान से मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। विनोद प्रधान की आंखों के सामने झील में कूद जाता है। तभी जयपाल भी वहां पहुंच जाता है और अपनी दुश्मनी भूलकर विनोद को बचाने के लिए झील में कूद जाता है। कटोरी ये बात रविता के घर वालों को बताती है। आइए अब सुनते हैं कि कहानी किस मुकाम पर पहुंचती है।
हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना भगवान।
एक्सक्यूज मी
जी,
आप प्रधान जी हैं?
जी।
आपके बेटे को होश आ गया है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं।
हे भगवान जी, जी डॉक्टर। सिस्टर, सिस्टर वो विनोद, विनोद नाम का पेशेंट किस कमरे में है?
हाँ हाँ, आप उधर उस कमरे में चले जाइए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो लक्ष्मी आओ।
मुझे मुझे क्यों बचा लिया पिताजी, मुझे क्यों बचा लिया? वैसे भी ये जिंदगी मेरे लिए सिर्फ सिर्फ एक बोझ ही तो है।
नहीं विनोद बेटा, नहीं, गलती मेरी है तो सजा तुझे क्यों मिले? गुनहगार तो मैं हूँ, इसने कभी भी HIV पॉजिटिव लोगों को, उनके दुख को, उनके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है बेटा, मैं जयपाल से भी माफी मांग लूंगा बेटा। हाँ
पिताजी, सिर्फ HIV पॉजिटिव होता तो शायद जी भी लेता, लेकिन रबीता के बिना नहीं।
नहीं बेटा, तू घबरा मत, मैं खुद सूरज से तेरी और रबीता की शादी के लिए बात करूंगा। हाँ
नहीं पिताजी, मैं रबीता को धोखा नहीं दे सकता। कैसे कहूंगा उससे कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो HIV पॉजिटिव है?
तो क्या हुआ विनोद?
रबीता।
हाँ विनोद, कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
नहीं रबीता,
क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था?
तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैंने
सब सुन लिया है, अब कुछ मत कहो। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं विनोद कि HIV का वायरस उसे खत्म कर दे। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ।
और बेटा, रही बात शादी की, तो मुझे अब भी तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है।
सूरज।
हाँ प्रधान जी, क्या आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे?
लेकिन उससे पहले मुझे माफी मांगनी है तुमसे।
अरे नहीं नहीं प्रधान जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लेकिन हाँ, शादी रबीता की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही होगी।
हाँ सूरज, बहू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तभी हम ब्याह करेंगे।
कटोरी।
अरे कटोरी, आओ आओ अंदर आ जाओ।
नहीं नहीं प्रधान जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ।
देखो मुझे शर्मिंदा मत करो कटोरी।
लेकिन प्रधान जी।
वैसे कटोरी, मैं तुम्हारा भी तो कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो कटोरी।
नहीं नहीं प्रधान जी, आप और मुझसे माफी।
नहीं कटोरी।
प्रधान जी ऐसी कोई बात नहीं।
जयपाल कहाँ है?
घबराइए मत प्रधान जी, वो लक्ष्मी के साथ घर चला गया है, कह रहा था वो अकेला रहना चाहता है।
सब मेरी ही वजह से है, वैसे भी शायद यूं चार लोगों के सामने जयपाल से माफी मांगना काफी नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना होगा।
मुबारक हो राजन जी, बेटा हुआ है।
सच डॉक्टर, मेरा बेटा हुआ है?
हाँ।
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुना तूने सुमन, डॉक्टर ने क्या कहा, तेरा भाई हुआ है।
हाँ पिताजी, मैंने सुना, मेरा भाई।
लेकिन डॉक्टर, शीला कैसी है?
वो अभी ठीक है।
और डॉक्टर, हमारा बच्चा?
राजन जी, बच्चा HIV पॉजिटिव है या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से शीला ने हमारी सभी सलाहों का ध्यान रखा है उससे तो मेरा ख्याल है कि बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं होगा।
जी डॉक्टर, क्या मैं शीला से मिल सकता हूँ?
हाँ हाँ आइए।
डॉक्टर, मेरा बच्चा।
शीला शीला, तुम अपना ख्याल रखो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है।
लेकिन वो HIV।
शीला, तुम्हारा बच्चा HIV पॉजिटिव है या नहीं ये हम केवल 18 महीनों बाद ही सुनिश्चित कर पाएंगे। और हाँ, अब तुम्हें उन सब कारणों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि बच्चे को माँ से संक्रमण ना हो, और पूरे 18 महीनों बाद यानी 1.5 साल के बाद बच्चे का HIV टेस्ट करवाना होगा।
जी डॉक्टर।
गांव वालों, जयपाल ने जिस बहादुरी से झील में डूबते हुए मेरे बेटे की जान बचाई है उसके लिए मैं गांव का प्रधान होने के नाते जयपाल को सम्मानित करना चाहता हूं। जयपाल, यहां मंच पर आ जाओ।
जयपाल, जाओ ना वहां मंच पर।
नहीं यार, वो सूरज वो।
अरे जाइए ना, प्रधान जी आपको मंच पर बुला रहे हैं।
नहीं लक्ष्मी वो।
जयपाल, यहां मंच पर आ जाओ।
देखो देखो, जयपाल आ रहा है। जयपाल।
जयपाल
जी। जी प्रधान जी।
ये लो, ये शॉल और 51,000 रुपए।
प्रधान जी ये तो।
गांव वालों, जयपाल बहादुर तो है ही, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मेरे बेटे की जान बचाई है, बल्कि इसलिए भी कि वो HIV पॉजिटिव होने के बाद भी जिंदगी जीने का जज्बा रखता है। और आज मैं सभी गांव वालों के सामने जयपाल से उसके साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जयपाल भी हम सबसे दो शब्द कहें।
जी मैं वो प्रधान जी।
हाँ जयपाल, मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें सुने, तुम्हें जाने।
सभी गांव वाले भाइयों को मेरा नमस्ते। भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही प्रधान जी से और ना ही गांव वालों से, क्योंकि भाई हम सब इंसान हैं और गलती हम ही से होती है। मुझसे गलतियां हुई, मैं HIV पॉजिटिव हो गया। आपसे गलती हुई, आप मुझ में और बाकी लोगों में भेदभाव करने लगे। कहीं ना कहीं गलत तो हम सभी हुए हैं ना भाइयों। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी HIV के बारे में जानें और समझें, ताकि आप उन्हें समाज से अलग ना करें, उनसे भेदभाव ना करें। भाइयों, कई बार ठोकर खाने के बाद ही हमें सही राह का पता चलता है, और शायद वही जीवन की सही राह होती है, जीवन की राह।
अच्छा लगता है चाहे सपना है, परवाह नहीं है यार। पर मैं दीवाना, ये भी ना जाना है जीना तो।
तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए।
बिल्कुल सही कहा तुमने प्रेमा। और एक कहावत भी तो है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता।
बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन आखिर में प्रधान को अपनी गलती का एहसास तो हो गया।
हाँ, तो दोस्तों ये हमारे धारावाहिक जीवन की राह की आखिरी कड़ी थी।
लेकिन जगत, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे श्रोताओं को कैसा लगा होगा जब उन्हें ये पता चला होगा कि जिस कार्यक्रम को वो पिछले एक साल से सुनते आ रहे हैं, आने वाला एपिसोड उसका आखिरी एपिसोड होगा?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है प्रेमा। तो क्यों ना ये बात हमारे श्रोताओं से ही पूछी जाए।
मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम आखिरी न हो, ये निरंतर चलता रहे, जिससे कि हमारे सभी जो हैं HIV के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम निरंतर आगे चलता रहे।
यह प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगा, खासकर HIV/AIDS STI संबंधित बातों पर जानकारी मिली। इन बातों पर हमारे समाज में बातचीत बहुत कम होती है, इसलिए प्रोग्राम भविष्य में भी निरंतर चलते रहे, जिससे हमें और भी अधिक जानकारियाँ मिल सके।
भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो आ रहा है आज, वो निरंतर चलना चाहिए, आना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी जानकारियाँ मिलें। तो मैं यही चाहूँगा कि औरों तक भी ये प्रोग्राम पहुँचे और लोग भी इसकी जानकारी लें।
जगत, यहाँ मुझे गालिब की गजल का एक शेर याद आ रहा है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।
सच में हम यही चाहते हैं दोस्तों कि आपके साथ बिताए ये लम्हे कभी भी खत्म ना हो, और जीवन के लम्हे जो हैं इसी तरह से बीतते रहें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुश्किल के।
साथ ही दोस्तों, हम सामुदायिक रेडियो हैवलवानी और मंदाकिनी की आवाज़ का भी धन्यवाद करते हैं, जो इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दूर दराज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
साथ ही साथ हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आईडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और साथियों, अब मन के उद्गार सिर्फ यही बात दोहरा रहे हैं,
HIV/AIDS की जंग में हम हो कामयाब, यही है उम्मीद अपनी और जीवन का है सार।
पल पल प्रतिपल यही है मन की पुकार, नई दिशा सबको मिले, मिले खुशियां अपार। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।
नमस्कार, नमस्कार।